अध्याय दो। भारत के भौतिक प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। भारत धरातलीय दृष्टि से विभिन्नताएं रखने वाला देश है। यहाँ पर पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार और मैदान, सभी प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय, 18% भूभाग पहाड़ी, 28% भूभाग पठारी तथा शेष 43% भूभाग मैदानी है। विश्व के औसत की अपेक्षा यहाँ पर मैदानी भाग का विस्तार अधिक है। भौतिक प्रदेशों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोग्राफिक रीजन्स। भारत के भौतिक प्रदेश निर्धारित करना एक कठिन विषय है। यहाँ पर एक प्रकार के भू आकृतिक प्रदेशों में अनेक धरातलीय विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग पर कितनी ही पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, पर्वतीय प्रदेश में भी अनेक चौड़ी नदी घाटियाँ मिलती हैं। अतः भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटना आसान नहीं है। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने भारत को तीन भौतिक प्रदेश बताए हैं तथा कुछ ने इसको चार भौतिक प्रदेश में बांटा है। भारत को चाहे हम तीन या चार भागों में बांटें, लेकिन सभी भाग भौतिक एवं भूगर्भिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं। भारत का पठारी भूभाग प्राचीनतम पठार है। इसके बाद उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से बना है। पठारी प्रदेश से बहकर आने वाली नदियों ने तटीय प्रदेशों की रचना की है। कुछ विद्वानों ने इन तटीय प्रदेशों को पठारी भूभाग के अग्रभाग के रूप में माना है। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इसको एक अलग भौतिक प्रदेश के रूप में माना जा सकता है, जिसका समर्थन अनेक भूगोलवेत्ताओं ने किया है। इस प्रकार भारत के चार भौतिक प्रदेश हैं, प्रायद्वीपी पठारी प्रदेश, द पेनिनसुलर अपलैंड्स, दूसरा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, तीसरा विशाल मैदान, द ग्रेट प्लेन्स, चौथा भारतीय तट एवं द्वीप समूह, द इंडियन कोस्ट एंड आइलैंड्स। पहला, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यह अति प्राचीन भूभाग है जिसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा यह उत्तर में विशाल मैदान तथा शेष तीन दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है। यह देश का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है तथा गोंडवाना महाखंड का अंग है। इस पठार पर अनेक पर्वत मिलते हैं जो निरंतर लाखों वर्षों की मौसम क्रिया से प्रभावित हैं। यह कई छोटे छोटे पठारों में विभाजित मिलता है। यहाँ पर तंग व चौड़ी नदी घाटियाँ भी मिलती हैं। इस प्रकार यह अनेक धरातलीय विभिन्नताओं से भरा पड़ा है। इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। विस्तार, इस पठार का विस्तार उत्तर में राजस्थान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1700 किलोमीटर की लंबाई में और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में मिलता है। इसके अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों के भूभाग आते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से इसकी उत्तरी सीमा अरावली, कैमूर तथा राजमहल पहाड़ियों द्वारा बनती है। पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं। इसकी सीमा के बारे में विद्वानों ने अनेक विचार प्रकट किए हैं। इस विषय पर अनेक नवीन अध्ययनों से पता लगा है कि भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार मेघालय का प्रसिद्ध मेघालय पठार इस प्रायद्वीप का ही एक उत्तर पूर्वी भाग है। इसके बीच का भाग गंगा नदी द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से भर गया है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में, जहाँ वर्तमान राजस्थान की मरुभूमि पाई जाती है, वहाँ गर्भ भाग में प्रायद्वीपीय चट्टानें पाई जाती हैं। स्पष्ट रूप से अरावली श्रेणियों के विस्तार निम्न उच्च भूमि के रूप में दिल्ली से भी आगे तक हैं, जिसे हम सतलज यमुना विभाजक प्रदेश कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस पठारी भाग का सुदूर उत्तरी पश्चिमी अग्रभाग पाकिस्तान के लायलपुर जिले के निकट रावी, चिनाब, झेलम नदियों के दुआब में किराना पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है। उपयुक्त बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि यह पठार हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व काफ़ी विस्तृत रूप से फैला था। इसने हिमालय के मोड़ों को प्रभावित किया है। हिमालय पर्वत पठार की उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी दिशा में आगे की ओर निकली हुई भुजाओं के कारण दक्षिण की ओर मुड़े दिखाई देते हैं। इसलिए इस पठारी भाग का विस्तृत रूप से अध्ययन करना और भी आवश्यक हो जाता है। यह पठार काफ़ी कटाफटा है तथा अनेक छोटे छोटे पठारों व पहाड़ियों में विभाजित हो गया है। इसलिए इसके प्रत्येक भाग के बारे में सूक्ष्म रूप से जानना अति आवश्यक है। प्रायद्वीपीय पठार, उच्च भूमि के पठार। नर्मदा सोन नदियों ने इस पठार को कई छोटे छोटे पठारों में बांट दिया है। नर्मदा के उत्तर में मालवा का पठार तथा दक्षिण में दक्कन का पठार मिलता है। सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर पठार स्थित है। गंगा नदी के पूर्व में मेघालय का पठार इससे अलग थलग हो गया है। मालवा का पठार, लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन गया है। इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है। इस पर बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, चंबल नदियां प्रवाहित होती हैं जो आगे यमुना में मिल जाती हैं। इन नदियों के मध्यवर्ती भाग उपजाऊ क्षेत्र हैं जिन पर काली उपजाऊ मिट्टी का जमाव मिलता है। इन्हीं में गांवों व नगरों का बसाव मिलता है। भोपाल बेतवा व पार्वती नदियों के दुआब में स्थित है। इस पठार पर उर्मिल मैदान, रोलिंग प्लेन्स मिलते हैं जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। इस पठार की उत्तरी व उत्तर पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार स्थित हैं। पठार के उत्तरी भाग को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड रिवाइंस के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। दूसरा, बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार। मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाते हैं। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों के बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण कर भूमि को प्रायः असमतल व अनुपजाऊ बना दिया है। यह पठार ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य फैला है। यह प्राचीनतम बुंदेलखंड नीस से निर्मित है। इस पर सोपानी वेदिकाएँ मिलती हैं। यत्र तत्र ग्रेनाइट तथा बालू पत्थर के टीले एवं पहाड़ियाँ मिलती हैं। इसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। विंध्यन श्रेणी, कैमूर व भारनेर पहाड़ियों के पूर्व बघेलखंड का पठार फैला है। इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियां तथा दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। बघेलखंड के मध्य भाग में स्थित ऊंचा भाग पूर्व से पश्चिम की ओर फैला पाया जाता है। यहाँ बलुआ पत्थर व चूने का पत्थर पश्चिमी भाग में तथा ग्रेनाइट चट्टाने पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। तीसरा, छोटा नागपुर का पठार। यह पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग व रांची जिलों पर विस्तृत है। महानदी सोन, स्वर्णरेखा व दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं जो गहरी घाटियों में होकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा में मिलती है। दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। राजमहल पहाड़ियाँ इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती हैं। यह पठार कई भागों में बटा हुआ है। दामोदर नदी के उत्तर में अनेक पठार व पहाड़ियों का समूह मिलता है। इसमें हजारीबाग का पठार तथा कोडरमा का पठार शामिल है। दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर है। यहाँ पर ग्रेनाइट व नीस चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ निचली पहाड़ियों के अलावा रांची का पठार समतल है। इस समतल भूभाग में रांची नगर स्थित है। इस नगर से नदियाँ चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। यह पठार किनारों पर बहुत कटाफटा है। दामोदर घाटी एक भ्रंश के रूप में है। यह गोंडवाना काल के भारी निक्षेप रखती है। यह पठार खनिज पदार्थों में धनी है। यहाँ पर भारत के प्रमुख खनिज बॉक्साइट, अभ्रक व कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रोमाइट, चिकनी मिट्टी, टंगस्टन, चूना पत्थर, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, इमारती पत्थर, तांबा भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। वन संपत्ति की दृष्टि से भी इसका महत्व है। साल, सागवान, जामुन, शीशम, हल्दू, सेमल व बांस के वृक्ष यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। पहाड़ी ढालों व नदी घाटियों में चावल की कृषि भी की जाती है। चौथा, मेघालय का पठार। यहाँ की चट्टानें छोटा नागपुर पठार की चट्टानों जैसी हैं। यहाँ पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व दिशा में मिकीर पहाड़ियों के नाम से फैली हैं। इस पठार का उत्तरी ढाल खड़ा ढाल है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तथा दक्षिणी ढाल धीमा है। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी स्थित है। नर्मदा व महानदी के दक्षिण में पाए जाने वाले पठारों को इस प्रकार रखा जा सकता है। दक्कन का पठार प्रमुख पठार है। इसके दक्षिण में तेलंगाना व कर्नाटक के पठार फैले हैं। पांचवा, दक्कन का पठार, इसको महाराष्ट्र पठार भी कहते हैं। क्रिटेशियस तथा पूर्व टर्शियरी काल में होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसिक लावा से इसका निर्माण हुआ है। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के भाग आते हैं। यह पठार पूर्व में अमरकंटक व सरगुजा तक, पश्चिम में कच्छ तक, दक्षिण में बेलगांव तक तथा दक्षिण पूर्व में राजमहेंद्री तक फैला है। ताप्ती नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। पश्चिम में पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत एवं पर्वत श्रेणियाँ। प्राचीन पठारी भूभाग होने के कारण अनावृत्तीकरण डेन्यूडेशन की क्रियाओं से सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ पर ऐसे पर्वत पाए जाते हैं जो एक समय काफ़ी ऊंचे थे, लेकिन आज उनकी ऊंचाई इतनी कम हो गई है कि इन्हें पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। अरावली पहाड़ियाँ इसी प्रकार के पर्वतों का उदाहरण हैं। पठार की प्रमुख पहाड़ियाँ इस प्रकार हैं। पहला, विंध्याचल पर्वतमाला। इसका विस्तार नर्मदा नदी के सहारे पश्चिम की ओर गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर उसके समानांतर पूर्व की ओर चलता है, तथा फिर यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है और आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों तक चला गया है। यह पर्वतमाला विंध्याचल, बारनेर, कैमूर व पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। यह मालवा बघेलखंड पठारों की दक्षिण व पूर्वी सीमा बनाता है। यहाँ पर प्राचीन युग की परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें लाल बलुआ पत्थरों की प्रधानता है। इसकी औसत ऊंचाई 750 से 1200 मीटर तक है। यह पर्वतमाला गंगा नदी के क्रम को दक्षिण भारत की नदियों के क्रम से अलग करती है। इसके उत्तरी किनारे से निकलने वाली नदियाँ गंगा के प्रवाह क्रम की नदियाँ हैं। इन पर्वतों की चोटियाँ चपटी हैं, लेकिन इनके दक्षिणी ढाल खड़े ढाल हैं। विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई 900 मीटर है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी की दरार घाटी का खड़ा ढाल है। इसी प्रकार कैमूर पर्वत सोन नदी की दरार घाटी का खड़ा ढाल है। दूसरा, सतपुड़ा पर्वतमाला। यह पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है, तथा पूर्व व उत्तर दिशा में आगे महादेव मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक फैली है। पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियों द्वारा बनती है। वास्तव में पर्वतमाला का विस्तार 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। यह अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है और महादेव पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत की दूसरी मुख्य चोटी अमरकंटक है, जो 1066 मीटर ऊंची है। इसके समीप से ही नर्मदा नदी निकलती है। धूपगढ़ के समीप पंचमढ़ी स्थित है। यह मध्य प्रदेश का प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक स्थान है। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नदियाँ अनेक जलप्रपात बनाती हैं। इनमें जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं। सतपुड़ा पर्वत के उत्तरी ढाल खड़े ढाल स्कार्पमेंट के रूप में हैं। तीसरा, अरावली पहाड़ियाँ। यह श्रेणी राजस्थान मरुभूमि की पूर्वी सीमा पर अहमदाबाद के निकट से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली के दक्षिण पश्चिम तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। यह श्रेणी उत्तर पूर्व की ओर सक्रिय होती जाती है और दिल्ली के निकट टीलों के रूप में रह जाती है। दक्षिण में इसकी ऊंचाई अधिक है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी आबू के निकट गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है। उत्तर में इसकी ऊंचाई कम होकर केवल 60 मीटर रह जाती है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है। इन पहाड़ियों का दक्षिणी भाग, जो उदयपुर के निकट स्थित है, जरगा पहाड़ियाँ कहलाता है। यह 1220 मीटर ऊंची है। अलवर के निकट इन्हें हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो 670 मीटर तक ऊंची हैं। दिल्ली के निकट यह दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई 304 मीटर है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक के रूप में काम करती है। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। पूरब की ओर की प्रमुख नदी बनास है, जो चंबल की सहायक नदी है। यह सभी बरसाती नदियाँ हैं। यह प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसके प्राचीन रूप के बारे में विद्वानों ने निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं। पहला, अधिकांश भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार यह पर्वत भारत के अति प्राचीन व सबसे ऊंचे पर्वतों के विस्तृत भाग हैं। विंध्यन काल में इनका जन्म मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ। इतने लंबे समय तक इन पर अनावृत्तीकरण की क्रियाओं का भारी प्रभाव पड़ा है। इस कारण अब यह घिसे पिटे पर्वतों के रूप में है। ए एम हैरो, ये पहाड़ियाँ पृथ्वी के धरातल पर संभवतः सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं, जो आज भी विद्यमान हैं। पांचवा, चौथा, पश्चिमी घाट। इसको सह्याद्री की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। यह दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा बनाते हुए पश्चिमी तट के काफ़ी समीप व समानांतर फैले हैं। उत्तर में यह ताप्ती नदी घाटी के दक्षिण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैले हैं। यह समुद्र तट की ओर इनका तीव्र ढाल है। उत्तर में यह कम चौड़े हैं तथा यह चौड़ाई 50 मीटर तक किलोमीटर तक है। दक्षिण में यह ऊंचाई 2600 मीटर से भी अधिक मिलती है। संपूर्ण श्रेणी को धरातलीय विभिन्नताओं तथा संरचनाओं के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। उत्तरी सह्याद्री, ताप्ती नदी से लेकर गोवा के उत्तर पूर्व में मलप्रभा नदी के उद्गम स्थान तक 650 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह भाग की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। पश्चिम की ओर इसका ढाल दीवार की भांति है। यह सीढ़ी नुमा विशेषता वाला है तथा पूर्वी ढाल मंद है। यह भाग गोदावरी, भीमा, कृष्णा एवं उर्रा नदियों का उद्गम क्षेत्र है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ कलसुबाई 1646 मीटर, सालहेर 1567 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर हैं। ब, मध्य सह्याद्री, मलप्रभा नदी के उद्गम स्थान से पालघाट दर्रे तक का करीब 650 किलोमीटर लंबा पश्चिमी घाट का भाग मध्य सह्याद्री कहलाता है। इसके आगे पश्चिम घाट चौड़े हो जाते हैं तथा पूर्व घाट में मिल जाते हैं। यह श्रेणी काफ़ी उबड़ खाबड़ धरातल वाली है तथा वनों से ढकी है। यहाँ पर आर पार जाने के लिए कोई दर्रा भी नहीं है। इसकी ऊंचाई 1220 मीटर है। यहाँ के प्रमुख चोटियाँ कुद्रमुख 1892 मीटर तथा पुष्पगिरी 1714 मीटर ऊंची हैं। दक्षिणी सह्याद्री, नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार करीब 290 किलोमीटर की लंबाई में है। यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों के साथ साथ अन्नामलाई की श्रेणी है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अनाई मुड्डी 2695 मीटर ऊंचा है। इस श्रेणी के उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ियां हैं तथा दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां। उत्तर पूर्व में इन पहाड़ियों पर इलायची के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। दक्षिणी सह्याद्री के पूर्व की ओर अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। पश्चिम की ओर भी अनेक नदियां प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती हैं। सह्याद्री की उत्पत्ति इन पर्वतों के उत्थान पर विद्वानों द्वारा रखे गए विचारों के दो पक्ष हैं। पहला, कुछ के अनुसार इन पर्वतों का उत्थान हुआ है और चूंकि यह भाग समुद्र के निकट रहा है अतः लहरों की क्रिया के कारण इसके पश्चिम ढाल खड़े हो गए हैं, पर यह मत भ्रामक है। दूसरा, अधिकांश के अनुसार इन पर्वतों का निर्माण इस क्षेत्र में एक विशाल भ्रंश बनने के फलस्वरूप हुआ है। भ्रंश के फलस्वरूप इन पहाड़ों का पश्चिमी भाग नीचे धंस गया और उसके ऊपर समुद्र भर गया। कालांतर में वर्षा के जल आदि ने इन ढालों के रूप को परिवर्तित कर दिया। यह मत सर्वमान्य है। पांचवा, पूर्वी घाट। महानदी के दक्षिण में उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 1300 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों तक फैले हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के निकट इनका अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 615 मीटर, औसत चौड़ाई उत्तर में 190 किलोमीटर तथा दक्षिण में 75 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रेणी को नदियों ने अनेक स्थानों पर काट दिया है, इस कारण यह अलग अलग पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को नीलगिरी, पालकोंडा, नल्ला मलाई, जवादी और शिवराय पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यह पर्वत गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच बिल्कुल समाप्त हो गए हैं।